जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत बदलता जाएगा, जग बदल।
भ्राता मोहन सिंघल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता हैं और आपने भी साकार बाबा की पालना ली है। विशेष जिस दिन 18 जनवरी के दिन बाबा व्यक्त हुए, उस दिन आप मधुबन में ही थे और बाबा की अंतिम क्लास भी आपने सुनी। हो सकता है आप शायद अपना अनुभव भी सुनाएं। तो आप का विषय है मन जीते जगत जीत। कहते हैं एके साधे सब सदे, अगर एक मन सज जाए तो सारा का सारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। तो कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें, ये हम आज सुनेंगे। आप वैसे ONGC में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे, उस दौरान कई स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, विशेष आसाम गुजरात में आपने सेवा केंद्र खोले। और जब ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर बनने के बाद से ही आप मधुबन में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, अनेक विंग्स की आपने प्रदर्शनी बनाई है, आपदा प्रबंधन आध्यात्मिक सशक्तिकरण उसमें मुख्य हैं और अनेक अभियानों का आपने नेतृत्व किया है। विशेष पर्यावरण सुरक्षा अभियान आपने निकाला था, उसके लिए भारत सरकार ने आपको पर्यावरण श्री पुरस्कार भी दिया था। तो ऐसे हमारे विशेष अनुभवी आप बहुत ही नम्रचित और मधुभाषी भी हैं। हम जब आपके व्यवहार में आते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं, तो आपसे हम सुनेंगे।
ओम शांति। आप सब हमारे साथ मिलकर के एक बार हृदय की गहराइयों तक ओम शांति बोलेंगे। शांति, ओम शांति ही, ये एक ऐसा महामंत्र है जिसके द्वारा जो भी जीवन में उपलब्धियां चाहते हैं उन्हें सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। और आवश्यकता इस बात की है, इसका हम केवल उच्चारण ही न करें ओम शांति का, लेकिन इसके अर्थ में सदा स्थित रहें। और साथ ही साथ जितना जितना अर्थ में स्थित रहते हैं उतना उतना ओम शांति के वास्तविक अनुभव में स्थित होते जाते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। हम सभी जीवन में जीतना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जीत में क्या क्या होता है? खुशी, और खुशी है, उमंग है, उल्लास है, शक्ति है, जैसा बताया, और यही जीवन में आवश्यकताएं हैं। तो आज का जो विषय है मन जीते जगत जीत, जगत में क्या क्या आ जाता है, संसार में क्या क्या आ जाता है, सब हम स्वयं भी आते हैं, सारे मनुष्य जाति आ जाती है, पशु पक्षी जीव जंतु ये सब भी आ जाते हैं, और प्रकृति के 5 तत्व भी आ जाते हैं। तो हमें केवल मन इसीलिए ही नहीं जीतना केवल अपने कर्मेंद्रियों पर अधिकार रहे, लेकिन पूरे विश्व की समस्त आत्माओं पर, जीव जंतु पशु पक्षियों पर भी और साथ ही साथ प्रकृति के तत्वों पर भी हमारा अधिकार रहे। तो इसके लिए बहुत कुछ कठिन नहीं है। भक्ति मार्ग में भले बोल दिया है मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ बाप दादा ने बताया है मेहनत तो है लेकिन असंभव नहीं है, और थोड़ी मेहनत है लेकिन मेहनत अगर सही दिशा में हो। खाली अगर मेहनत करते रहे, मन का दमन करते रहे, मारते रहे, तो उससे उतनी प्राप्ति नहीं होगी। तो सही दिशा में हम कैसे चलें कि मन पर विजय प्राप्त कर लें, उसके लिए हमारे सामने कौन उदाहरण है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि एक ही आत्मा है जो अभी तक विजय प्राप्त करके बस सूक्ष्म वतन गई है और कोई पुनर्जन्म नहीं लिया है। नहीं तो जो भी और आत्माएं गई हैं, सबने अपने हिसाब किताब के अनुसार पुनर्जन्म पाया है। तो बाबा ने क्या किया? क्योंकि बाबा भी संसारिक व्यक्ति थे, उनमें हीरे जवाहरात के प्यारी और सारा परिवार, धन दौलत, संबंध सब था। तो जब बाबा को ये ज्ञान हुआ और साक्षात्कार वगैरह हुए तो जीवन तो बदल गया, लेकिन बाबा का मन भागता था। और अक्सर करके बाबा बस बैठते थे, एकांत में भी बैठते थे। आपने बाबा का वो चित्र भी देखा होगा, ऐसा करके बाबा पेड़ के किनारे भी हैं एकांत के लिए, कश्मीर और उधर चले जाते थे। लेकिन जब मन भागता था तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? देखो बड़ा विचित्र है, गौर से सुनना, क्योंकि हम सबको भी मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री बलशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। तू मुझे जहां जहां ले जाता रहा, मैं जाता रहा, पीछे पीछे भागता रहा और कमजोर मैं होता चला गया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं, जब बाबा ज्ञान में आए, हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं, और अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तू मेरे अंडर में है, मैं राजा हूं। इसलिए बाबा ने पहले अपने को स्वाभिमान में स्थित किया, स्वस्थिति में स्थित किया। और इसके लिए बाबा ने केवल मन को ही नहीं, फिर बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमजोर कर दिया था, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। हम सभी भी चाहते हैं कि मन हमारे अंडर में रहे, लेकिन अक्सर करके कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कभी कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, उस तरफ बुद्धि भागती रहेगी, व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा। चाहते हैं सहन शक्ति आए, समाने की शक्ति आए, समेटने की शक्ति आए, आती भी है अगर एक दो मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर मन भाग जाता है उधर ही की तरफ। तो क्या करें? वही विधि ये बाबा ने बताई कि हम अपने पहले स्वाभिमान में स्थित नहीं स्थित होते। तो जो बाबा ने हमें सीट दी है, पहले हम सीट पर सेट होके फिर उस शक्ति को, उस मन को, बुद्धि को ऑर्डर करें। मानो कोई आज की दुनिया में भी पॉलिटिकल लीडर है, या प्रधानमंत्री राजा है, या कोई बड़ा कलेक्टर ऑफिसर है, जब तक वो अपनी सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन जब सीट पर नहीं है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, इलेक्शन में हार गया, सीट पे नहीं है, तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। बस ऐसे ही है कि हम जो है ना, बिना अपने स्वमान की सीट पर स्थित हुए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मन हमारे कहने पर चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो एक तो ये आवश्यकता है कि हम पहले जो जो बाबा ने इतने स्वमान दिलाए, अभी पिछले शायद रविवार को ही ये था ना, बाबा ने क्या क्या विघ्नों से पार होने की युक्ति अव्यक्त मुरली में बताई थी ना, बाबा ने क्या क्या टाइटल दिए थे हम बच्चों को, ऊपर से शुरू करो, अरे तुम मेरे सिर के ताज हो, नैनों के नूर हो, दिल तख्त नशीन आत्मा हो, आंखों के नूर, और साथ साथ और बाबा ने क्या, गले का हार हो, कितने हो, विश्व महाराजन हो। तो जितने हम बाबा, मैं ये हूँ, जो जो बाबा ने कहा उसमें पहले स्थित होके अपने को, फिर मन को हम ऑर्डर करेंगे, जिस शक्ति को ऑर्डर करेंगे आप देखो वो तुरंत आएगी और स्थित हो जाएगी, भाग नहीं जाएगी, हमारे पास वो रहेगी। तो एक आवश्यकता ये है कि स्वस्थिति में स्थित हो, हमारी स्वस्थिति को हम पावरफुल बनाएं, जिससे परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। बाबा का भी ऐसा था। वैसे तो हम बाबा से कई बार मिले, 1963 में 62 में ज्ञान में आए, कई बार बाबा से यहाँ पर भी और दिल्ली में और कानपुर में और कई जगह मिलना होता था। यहाँ पर भी जब हम आते थे, देखते थे हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास कराते थे, और कई बार बाबा को खांसी कई बार आती थी, उम्र भी थी काफी, 90 के ऊपर की उम्र थी, सर्दी का मौसम भी होता था, तो बाबा को खांसी आती, लगता था कि बहुत कष्ट हो रहा है, और आंख भी गीली गीली जैसे हो जाती थी, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा बस परिस्थिति से बाहर निकल के स्वस्थिति में स्थित, अरे बच्चे देखो आज ये पुराना शरीर, पुराने रोग विघ्न ये आ रहा है, बस कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का चित्र रहता था, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, हो कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, बस वहां तो कोई व्याधि नहीं, कोई सब शरीर भी और तत्व भी इतने सारे सात्विक होंगे, और बस बाबा एकदम जैसे वहां पहुंच जाता था, और जैसे ही स्वस्थिति शक्तिशाली हुई, कुछ सेकंड में ही ये खांसी रूपी परिस्थिति एकदम दूर हो जाती थी। तो आज एक तो ये आवश्यकता है कि स्वस्थिति में हम स्थित हों, और ये कोई भी परिस्थिति की मन भाग जाता है, ये बात हुई, ऐसी बात, कुछ भी हो, लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर तुरंत विजय प्राप्त तब होगी जब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। एक तो साकार बाबा का ये देखा, क्योंकि बाबा हमारे सामने कुछ जो 8-10 कर्मातीत स्थिति वाले दिन तक जो देखा बाबा को, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो ही विजयी आत्मा है अभी तक। तो एक तो हम स्वस्थिति के ऊपर ये करते रहे, दूसरा बाबा ने बताया भी हुआ है कि अब बच्चों के सामने पेपर तो आएंगे, पेपर आते भी हैं, लेकिन समय अनुसार पेपर बदलते रहते हैं। आप भी सोचो, पहले जब नए नए आए थे तो पहले बाहर की दुनिया के पेपर, भाई बाहर का खाना पीना या कोई सिनेमा देखना, उनके उनसे हम जो है युद्ध करके विजय करते थे। अभी और सूक्ष्म 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 पेपर आते हैं, तो वर्तमान समय के मुताबिक बाबा ने बताया बच्चों में को दो प्रकार के पेपर विशेष आएंगे। कौन से दो प्रकार के? एक है पेपर शरीर का, ये अंतिम पेपर है। ये ना सोचें कि शरीर का पेपर उनके सामने आएगा जो उम्र वाले हैं, बुजुर्ग हैं, हम तो अभी युवान हैं, नहीं, आत्मा के लिए ये पेपर आता है। और आत्मा तो इतने 84 जन्म और विशेष करके 63 जन्मों में जो भी उसने कर्म किए हैं उन सब का हिसाब किताब इस शरीर के साथ ही हमें चुकतू करना है, चाहे युवान है शरीर चाहे वृद्ध है कोई भी। तो इस शरीर के साथ पेपर अवश्य आएंगे, आ रहे हैं, किन्हीं के पास पहले आ जाते हैं, किन्हीं के पास बाद में आते हैं, लेकिन आएगा अवश्य, क्योंकि ये अंतिम प्रकृति का पेपर है। 5 तत्वों का बना शरीर है और यही हमारा आदि से लेकर अंत तक का साथी है। सतयुग में पहले जन्म से लेकर इस अंतिम जन्म तक ये भले नाम रूप अलग अलग हैं, तत्वों की स्थिति भिन्न है, पहले सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान हो गए, लेकिन शरीर ये हमारे जन्म जन्म का साथी है। 5 तत्व, तो इनका पेपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, इस पेपर में कैसे करेंगे, बाबा ने बताया है उसका सबसे अच्छा इलाज। और बाबा को हम देखते थे, एक प्रैक्टिस बस हम सब की हो, जिस समय चाहे हम शरीर में आए पार्ट बजाएं और जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाए, और जितना जितना न्यारा होने की हमारा अभ्यास होगा उतना उतना शरीर से संबंधित जो भी पेपर आता जाएगा उसमें हम विजयी होते जाएंगे। बाबा का ये देखा हमने, ये प्रैक्टिस बाबा बहुत करते थे। जैसे पार्टी आजकल आती है, दादियों से मिलने का टाइम होता है, ऐसे ही बाबा के समय भी पार्टियां ब्राह्मणी लेकर आती थी, टाइम था, मानो 10 बजे बम्बई पार्टी, 10:30 बजे दिल्ली, 11 बजे कलकत्ता पार्टी, ऐसे अलग अलग टाइम होता था। और बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे, या अपने कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में। कमरा बाबा का बहुत छोटा था, जितना पलंग है उतना ही था, ये तो बाद में बढ़ाया गया, बस जरा सा, जिसमें एक तरफ पलंग, एक तरफ नीचे जो गद्दी बाबा की पड़ी है, और बीच में एक बस कुर्सी मेज छोटा सा, बस इतना। तो जो अगर थोड़ी पार्टी होती थी, 2-3-4 लोग होते थे, तो बाबा के कमरे में भी मिलते थे, और 6-7-8 होते थे तो झोपड़ी में। और अगर बड़ी पार्टी, तब तो बड़ी पार्टी माने 12-15 होते थे, 20 होते थे, तो बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी, तो उस समय तब बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो अक्सर यही होता था, बस जो टाइम दिया होता था, ब्राह्मणी पार्टी लेकर जाती थी, बस देखा बाबा बैठा है, आंख खुली भी हुई है लेकिन देह से न्यारा। ब्राह्मणी जाती थी, बाबा बाबा, तो बाबा को थोड़ा कई बार जैसे जर्क सा भी लगता था, और जैसे कोई ध्यान में नहीं, साक्षात्कार में नहीं, लेकिन देह से न्यारी स्थिति में बाबा होता था। बच्ची, अच्छा बच्ची आ गए, हाँ बाबा फलानी पार्टी लेके आए हैं, हाँ बच्ची लाओ बच्चों को, बैठ जाते थे, फिर बाबा मिलते थे सबसे, और मिल करके, और बस जैसे ही कोई मिलते थे, बाबा के पास आते थे, बाबा दृष्टि देते थे, कई बार बाबा घूमते हुए होते थे, बाई चांस कोई मिल जाओ, आओ बच्चे आओ 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 मीठे, बस ऐसे बाबा ने हाथ, जैसे बाहर चित्र लगाए ना, ऐसे बाबा और हम लोग चुंबक की तरह खींचते हुए चले आते थे। लेकिन मुख्य बात ये थी कि जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी, बाबा का स्पर्श होता था, विदेही हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा की अपनी प्रैक्टिस इतनी थी विदेही होने की, कि जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी ना, थोड़े समय के लिए विदेही। फिर बाबा क्या करते थे, ऐसे थपथपा के, आओ बच्चे, चाहे बैठ के गोदी देते थे, चाहे उधर आओ आओ बच्चे। फिर हम लोग देह में आने का प्रयास, देह में आके फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और इस तरह एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा, लेकिन हरेक को यह अनुभव हो जाता था देह से न्यारेपन का। ये है एक मन जीते जगत, अपना मन बाबा ने चूंकि जीता था, तो दूसरा भी तुरंत ही भले कुछ समय के लिए ये अनुभव करता था, जैसे मन विजय कोई संकल्प रहित जैसे हो जाते थे, या एकदम बहुत ऊंचे शुद्ध संकल्प, महान संकल्पों में स्थित, क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त होता था। बाबा अभी हम बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने तो बाबा था, लेकिन दुनिया के सामने हम सभी ही ब्रह्मा के रूप। बाबा ने कहा ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी। एक एक बच्चे से ब्रह्मा का रिफ्लेक्शन हो। तो इसीलिए जिस आत्मा को भी हम दृष्टि दें, जहां भी जाए, बस वो आत्मा विदेही अशरीरी का अनुभव करे। तो ये एक दूसरा मन जीते जगत जीत का बाबा को से अनुभव होता था कि बस मिलते थे, फिर एक एक करके, और थोड़े समय के लिए होगा क्योंकि जैसे ही बाबा से दूर हुए दूसरा आया, फिर दूसरा अनुभव करता था, तीसरा। ये एनर्जी ट्रांस, स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांस, जैसे लौकिक में होता है ना, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मानो ये चीज हमारे पास, हम इसे ऊपर फेंकेंगे, तो जब तक हमारी शक्ति है ये ऊपर जा रहा है। जब हमारी शक्ति कम हो गई और पृथ्वी की शक्ति के बराबर हुई और वो ज्यादा हो गई पृथ्वी की, तो ये फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही बाबा के सानिध्य में, बाबा की दृष्टि पड़ते ही इतना शक्तिशाली कि देह और देह भान की स्थिति भूल जाती थी। क्योंकि जो ये सुनाने सबका भाव ये है कि हम सबके द्वारा दुनिया को ये अनुभव कराने हैं, उन्हें होने भी है। क्यों? क्योंकि हम सब के द्वारा कल्प पहले ये अनुभव हुए थे, और ये न सोचे वो तो ब्रह्मा बाबा था, नहीं, बाबा भी घर गृहस्थी वाला, वही साधारण धन कमाने वाला, बिजनेस वाला, सब कुछ पूरा वो, लेकिन कैसे बाबा ने परिवर्तन अपने को किया। और कोई विशेष शक्ति बाबा की नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा कहता था कई बार, बाबा ब्रह्मा बाबा कहे, बाबा मुझे मेरी इस खांसी से, मेरी सखी से मुझे थोड़ा बचाओ, दूर करो, ये तकलीफ देती है। तो बाबा क्या कहता था? भाई ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तुम्हें ही चुकतू करना है। मैंने अगर तुम्हारा आधार लिया है तो कोई इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कोई स्पेशल कंसेशन दूंगा, कुछ नहीं। तो जब ब्रह्मा को कोई कंसेशन नहीं, तो आपको या मुझे कोई कंसेशन होगा? कोई भी शरीर के व्याधि हो, कष्ट हो, हमें चुकतू करना ही है। खुशी खुशी करें या रोते हुए करें, कष्ट के साथ करें। तो इसलिए ब्रह्मा को कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं था। उनका ऑपरेशन भी हुआ, कष्ट, शरीर के भी बहुत व्याधियां, कई प्रकार के, लेकिन ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे विजय प्राप्त करते गए। तो एक ये, तो जब ब्राह्मणियां मिलते थे और हम सब मिलते थे, तो एक ये अनुभव। तो ये है शरीर का पेपर पर विजय प्राप्त करने के लिए कि जब चाहे देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। हमने भी कई बार इसका प्रयोग अपने ऊपर भी किया है, सहज। एक बार हमें भी बहुत फीवर था, 105 फीवर, 105, बहुत शरीर में कष्ट था, नींद नहीं आ रही थी, बहुत तकलीफ। लेकिन ये उसी दिन ही बाबा की मुरली चली, अरे बच्चे, शरीर में व्याधि का भी तभी अनुभव होता है जब हम देह भान में रहते हैं। अगर हम चाहें कि व्याधि शरीर में होगी, हिसाब किताब होगा, लेकिन आत्मा को उसका कष्ट न हो, तो क्या करना है? अपने को डिटैच करना है, डिटैच करने का अभ्यास। बस उसी दिन ही हमने बोला, हमारे लौकिक माता जी थे, कि भाई हमें थोड़ा ये अभ्यास करने दो, थोड़ा बस मैं आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, शरीर से अलग हूँ, डिटैच हूँ। बस ये इस एक संकल्प में ही स्थित होते गए, नींद आ गई, 3-4 घंटे की इतनी अच्छी नींद आई, और उसके बाद देखा तो बस कोई भी दर्द नहीं, बुखार भी उतर के नॉर्मल की तरफ, बिल्कुल 99 तक जैसा हो गया। तो बाबा जो कहते हैं, वास्तव में ये बिल्कुल सत्य है। अनुभव हर चीज का करते चलें, तो ये हमें उसकी तरफ ले जाएगा, और ये आएगा जरूर, व्याधि शरीर का। दूसरा पेपर कौन सा होगा? एक ये शरीर का पेपर, दूसरा परिवार का पेपर। क्योंकि जितना जितना हमारा दैवी परिवार बढ़ता जाएगा ना, तो उनके सानिध्य में आएंगे, तो जैसे लौकिक दुनिया में लौकिक परिवार संबंधियों का पेपर होता है, ऐसे अभी तो हमारा यही परिवार है, इनका पेपर। क्या पेपर आएगा? किसी को भी कई बार होगा, बहुत पुराने भी हैं, 25-30-40 साल पुराने, कोई ऐसी बात देखी उनमें, मर्यादा विहीन बात हुई, कोई ऐसा उनकी अवस्था डगमग होती हुई देखी तो बस खुद भी हम हलचल में आ जाते हैं। इस टाइप से कोई भी पेपर होगा, लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या बताया है, देखते हुए भी नहीं देखना। बहुत अच्छी बात। विशेष उसके लिए दो बातें हम याद रखें। पहली बात कि किसी भी आत्मा को हम केवल एक काल की दृष्टि से न देखें। जब हम केवल वर्तमान की दृष्टि से ही देखते हैं ना, तो हमारी उसकी हलचल अवस्था वो ही दिखती है जो वर्तमान में उसकी स्थिति है, कमी है, कमजोरी है। लेकिन हम यही ख्याल रखें, ये वही आत्मा है जो डबल ताजधारी आत्मा है। वही आज उसकी ये स्थिति है, कल फिर अपनी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे नाटक या फिल्म होती है, क्या होता है, हर एक का पार्ट अलग अलग होता है। भाई हीरो हीरोइन होते हैं और कॉमेडियन होते हैं, विलेन होता है अलग, खलनायक होता है, नाचने गाने वाले होते हैं, सुख दुख खुशी के दुख के सब सीन होते हैं। कभी ये नहीं होता, क्योंकि बाबा ने कहा है ये सृष्टि नाटक मुझे अति प्रिय है, इससे अच्छा और नहीं बन सकता था। तो जो भगवान को प्रिय है वो हमें प्रिय है। इस कारण से किसी को भी हम देखें, एक तो उसके ऊपर हमारा हलचल मन की ना हो, ये देखें आज उसकी ये अवस्था है, कल फिर अपनी उच्च अवस्था में आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट, क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। बाबा ने कहा है एक एक बच्चा मेरा चुना हुआ है। आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी वो महान है जो मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी है, वो भी आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो तो आदि मध्य अंत को जानता है, त्रिकालदर्शी है, एक एक बच्चे को त्रिकालदर्शी की दृष्टि से देख करके उसने चुना है। तो इसलिए अगर हमें कोई सी की अवस्था हमें हलचल में ले आती है, इसका मतलब हमें भगवान के सिलेक्शन पर डाउट आ रहा है। अरे भगवान, आपने बाबा आपने इसे चुना, लेकिन नहीं, वो आज उसकी ये स्थिति है। लेकिन अल्टीमेटली उसके द्वारा कोई न कोई प्रत्यक्षता भगवान को करानी है, किस समय पर किस स्थिति में वो तो बाबा ही जाने, ड्रामा जाने, लेकिन जरूर उसके द्वारा कोई ऐसा पार्ट होना है जो विश्व के आज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी पार्ट नहीं है, तभी भगवान ने चुना है उसे। इस कारण से किसी भी आत्मा के पार्ट पर कोई डाउट ना है, संशय ना है, उससे क्या होगा, बस तब ये स्थिति आएगी जो बताया, देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, अति हलचल में अति अचल रहना, जो बाबा ने बताया है। ये बहुत बड़ा लास्ट का पेपर है, और किसी पर भी कोई, क्यों, क्योंकि भगवान का सिलेक्शन। तो ये दोनों पेपर से बिल्कुल अंत में एकदम पार हो जाएंगे दोनों, एक अपना एक पूरा परिवार का पेपर। तो बाबा को क्या देखा हमने, मन जीते जगत जीत में। पहले तो बाबा से जब भी मिलते थे 62, 63, 64, 65, तो बाबा हम लोगों से हालचाल पूछता था, हाँ बच्चे क्या सेवा की, क्या वो, और फिर बाबा धीरे धीरे बस समेटता जा रहा था। हम सब भी ये देखें, हम सब समेटते जा रहे हैं, क्योंकि अंत में कहीं बुद्धि न जाए, एक तरफ ही बुद्धि रहे, वो तभी होगी जब हमने अपना मन को समेटा हुआ होगा। बिजनेस की तरफ, परिवार की तरफ, पति पत्नी पोते बच्चे, धन दौलत, कहीं पर भी जहां पर भी थोड़ा लगाव झुकाव हुआ, बस वहां बुद्धि चली जाएगी, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। जैसे वहां बुद्धि गई और उस समय अगर शरीर छूट गया, वहीं पर जाके पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर से हिसाब किताब शुरू। लेकिन ऐसा न हो, उसके लिए समेटना हम शुरू करते हैं। कहीं पर भी जिसका लौकिक में समेटा हुआ हो, अलौकिक में, हर जगह बाबा ने कहा है बुद्धि को समेटा हुआ हो। और बाबा कैसे समेटता जा रहा था, पहले बाबा ये सब पूछा करता था, फिर बाबा के पास हम जाते थे तो 66 में 65 66 67 में हम देखते थे, बाबा को कुछ बात बताई, दो तीन लाइन ही बोली, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, पूरी की पूरी समस्या नहीं बताई कोई, नहीं नहीं बाबा ये समझ गया, और बाबा एकदम उसको बता देते थे समस्या को भी और उसका निदान कर देते थे। लेकिन अंतिम दो दिनों में हमने क्या देखा, गौर से सुनना, 17 और 18 जनवरी को, क्योंकि हम 17 जनवरी की सुबह ही आसाम में पोस्टेड थे और बस बाबा ने कैसे युक्ति से बुला लिया, बस आसाम से भाई प्लेन, बाबा ने इशारा दिया था, पहली बारी प्लेन में चढ़ के यहाँ पहुंच गए और 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखी। क्या लक्षण थे? एक तो ये देखा, बाबा से दो दिन में 6-7 बार मिलना हुआ, तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, आज बाबा को ये बताएंगे सेवा की बात, वहाँ ये सेवा कर रहे हैं, बाबा से धारणा की बात पूछेंगे अगले मीटिंग में, ऐसे अलग अलग। लेकिन बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने जरा सा यूं दृष्टि दिया, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, मतलब हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा मन में क्या हम संकल्प लेके आए हैं वो मन की बात भी बता देता था और उसका समाधान भी दे देता था। ये है मन जीते जगत जीत की अल्टीमेट स्थिति, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। हमारे मन में अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, हम दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ सके। बाबा ने वो स्थिति प्राप्त कर ली थी, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपने मन के ऊपर विजय संकल्पों पर, तो दूसरे के संकल्प तुरंत ही पढ़ के उसका समाधान दे देते थे। क्यों? जैसे पानी होता है ना, पानी में अगर स्वच्छ पानी होगा और पानी में कोई हलचल नहीं होगी, अचल होगा, हम अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं, साफ दिखाई देगा। लेकिन एक छोटा सा कंकड़ डाल दो उसमें तो क्या होगा, लहरें पैदा होंगी, अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो यही बात होती है, हमारे अपनी कोई भी संकल्प अगर हुआ तो किसी दूसरे की बात के हम अपने ही मन के संकल्पों को पूरा नहीं पढ़ सकेंगे, दूसरे की तो बात बाद में रही, उसके संकल्पों में हमारे संकल्प मिक्स हो जाएंगे तो हम उसकी इच्छा को पूर्ण कैसे कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान समय हम साधारण नहीं है, हम दुनिया के इष्ट देवों में हैं। जो भी आत्माएं आती हैं वो कौन है, जो वो सब हमारे भक्त हैं, हम उनके इष्ट देव हैं। अभी भी हमारी मूर्तियों के सामने जाके लंबी भीड़, कितने लंबे लंबे मंदिरों में जाओ, इतने माइलों की कतार में भक्त खड़े रहते हैं, हमारी जड़ मूर्तियों से वो इच्छा पूर्ति का अनुभव करते हैं, हम तो यहाँ चैतन्य में हैं। ये पाठ चलना है हमारे आपके द्वारा और अभी चलना शुरू हो गया और चल रहा है, बस लोग आएंगे। बाबा ने कुछ दिन पहले बोला था ना, बाप और टीचर का तो बाबा बोलते गए, अभी बाबा ने क्या कहा है, हम सब सदगुरु भी है, मास्टर सदगुरु नहीं, सदगुरु। क्यों? भक्तों की और अपने जो है उनके इच्छा पूर्ति पूर्ण करने वाले, और ये हम में वो नहीं है कुछ भी, लेकिन भगवान बाबा हमारे द्वारा उनकी इच्छाओं को पूर्ण कराता है। बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं, लोग आते हैं, आप ये कर दो भाई साहब, आप ये कर दो बहन जी, और हम कहते हैं हमारे पास तो भाई कोई भक्ति मार की तरह शक्ति नहीं है, हाँ बाबा को आप याद करो, अगर इसकी ये व्याधि दूर होनी होगी हो जाएगी, नहीं ये तो हम कर रहे हैं, बस आप सिर्फ हाथ रख दो सिर पर, ये मेरे बच्चे पे ये व्याधि है, इसका ये कष्ट है, आप इसका ये, हम कहते हैं कि नहीं हम लोगों में कोई नहीं, नहीं नहीं बस आप प्लीज, और उनकी इच्छा को वो करते हुए हम लोग बस बाबा को यही, बाबा इस आत्मा के मन में जो है उसकी इच्छा को आपको सब पूर्ण करना है, देखना है, बाबा ये तो आपका कार्य है, हम लोगों में तो कोई शक्ति नहीं है, उसकी बात को हम लोग सिर्फ दलाल बन के बाबा को ट्रांसफर कर दें, फिर आप देखो कितने केसेस होते हैं, दो दो साल बाद, तीन तीन साल बाद भी, अरे इसे भाई साहब इतना ब्रेन ट्यूमर था, इसको ये था कैंसर, कैसे हो गया। हम लोग बोलते हैं भाई हम लोगों में तो कोई वो नहीं है, ये तो बाबा ने, आपने इच्छा रखी बाबा ने, नहीं नहीं आपने जब से करा। और ये बाबा अभी ये सदगुरु का पार्ट हम सबके द्वारा, आप बड़ी बड़ी दादियों से पूछो, वरिष्ठ भाई बहनों से पूछो, कितना ये पार्ट सदगुरु का अभी चल रहा है। हम अपने पर डाउट न रखे, मैं तो साधारण हूं, मैं तो भाई यहाँ पर हमारी वरिष्ठ दादियां हैं दीदियां, नहीं, जो भक्त जिसका इष्ट देव है उसके पास जाके ही इच्छा पूर्ति का अनुभव करेगा, दूसरे के पास नहीं। अगर हमारा भक्त है हमारे पास अनुभव होगा, इनका भक्त है इनके पास आके उसे जो संतुष्टता का अनुभव होगा वो दूसरों के पास नहीं होगा, चाहे दूसरे जितने भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार वही है और हरेक में अपने अपने संस्कार हैं भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के। और ये संगम परी पार्ट चल रहा है, तो अपने को कभी भी हम अंडर एस्टिमेट न करें, साधारण न समझें, नहीं मैं वही भगवान की चुनी हुई महान आत्मा हूँ, मैं अति महान हूँ, मेरे द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य होना है। जैसे योग में हम कहते हैं ना नयों को, भाई मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम की, तो वो प्रेलिमिनरी स्टेज है, शुरू की है, वो हम लोगों के लिए नहीं है, हम सब के लिए महान स्टेज नहीं। पहले अपने स्वमान में मैं बाबा का सरताज आत्मा हूँ, नैनों के नूर हूँ, मस्तक मणि हूँ, बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ बाबा, और अपने को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मैं बाबा के दिल तख्त में बैठी हूँ, जैसे हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना भक्ति में, वो चीरा तो अंदर राम सीता थे, ऐसे ही बस मेरे हृदय में मेरे मस्तक में बस बाबा बाप दादा है। विजुअलाइज करेंगे दूसरों को भी विजुअलाइज होगा, उन्हें दिखेगा, हम खुद विजुअलाइज नहीं करेंगे तो दूसरों को भी कैसे दिखेगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन बातों को भरते रहो भरते रहो भरते रहो, और वही सबकॉन्शियस माइंड अंत मते सोगते काम आएगा। कॉन्शियस माइंड माने चेतन मन, तो एक्वायर्ड वो है, मतलब इस जन्म में हमने जो जो देखा है सुना है जो संबंध है उनकी बातें हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पूरे 84 जन्मों की बातें भरी हुई है। तो इसीलिए अपनी महानता का ही बस हम अनुभव करें, उनको रिपीट करें सेल्फ अपने अंदर, आप देखो बस ये करो एक बात रोज, बाबा मैं ही माला का मड़का हूं, मैं ही विजयी रतन हूं, कलप पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो, कलप कलप मुझे आप विजयी बना। सब कॉन्शियस माइंड को हम ये थॉट्स देते रहे रोज की रोज, बनाओ बाबा आप ये करो। सब कॉन्शियस माइंड इस बात की भाषा को नहीं समझता, वो पॉजिटिव भाषा ही समझता है कि बस बाबा आपने बनाया था अभी भी बना रहे हो, कलप कलप की मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं वो ही हूँ बाबा कलप पहले वाली, आपने मुझे चुना था माला का मणके के लिए, अभी भी आप चुन रहे हो, मैं ही बन के दिखाने वाली हूँ जैसा मैंने कलप पहले बन के दिखाया था। अपने में किसी भी प्रकार का संशय न हो, तो उससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मन वो हमारे वश में होता जाएगा, और मन जीते वो जगत जीत, उसकी तरफ हम बढ़ते जाए। बाबा का यही देखा, हाँ उस दिन 18 जनवरी को रात्रि क्लास बाबा करा रहे थे हिस्ट्री हॉल में, हम भी सामने बैठे हुए थे, दादी जी इधर बैठे हुए थे बहनों की तरफ, दादी जी एकदम फ्रंट में बैठे थे, हम तीसरी चौथी लाइन में थे। सुनते सुनते उस दिन की आप मुरली सुनो, हाँ वो मुरली भी मिलती है यहाँ ओम शांति भवन के नीचे जो ऑडियो विजुअल काउंटर है वहां पर उस दिन की सीडी भी है बाबा से, कि 18 जनवरी की रात्रि क्लास अंतिम, तो एक बार भी बाबा को न खांसी आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि उस दिन सुबह भी और एक दिन पहले भी उस दिन सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी 18 जनवरी की सुबह, क्योंकि बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन रात्रि को, हाँ वैसे रोज क्लास इधर होती है 8:45-9 बजे, बाबा के टाइम भी यही टाइम था, लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग 7 बजे कहा अपने जमुना प्रसाद भाई को, जानते हैं ना मुरली जो छापते हैं, कि बुलाया और कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बता दो। तो बाहर एक उसके हिस्ट्री हॉल के बाहर एक स्कूल में जैसे घंटा बजाते हैं ना, वो रखा हुआ रहता था, उन्होंने बजाया, सब इकट्ठे हो गए, सबको बता दिया आज बाबा ने कहा बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब भोजन आदि करके सब आ जाए जल्दी। 7:30 बजे सब लोग इकट्ठे हो गए और बाबा फिर क्लास में आए। बिल्कुल बाबा का वही रूप है जो बाल कृष्ण का सा रूप होता है, जैसे एक लंबी सी ऐसे टोपी है। ऑलराउंडर दादी ने, ऑलराउंडर दादी दिल्ली की हेड थी और गुलजार दादी की लौकिक में माता जी, वो उस समय दिल्ली का पूरा हेड थे। तो हम चूंकि आसाम से आ रहे थे, बस वो भी एक इतिहास है लेकिन समय के अभाव में नहीं बताते। कैसे जब हम आसाम जा रहे थे, हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी इंजीनियरिंग पास करने के बाद पहली पोस्टिंग ही आसाम में हुई। तो हमने कहा बाबा हम वहां जाएंगे, वहां तो 3,000 माइल तक कोई सेंटर भी नहीं है और एक भी कोई गीता पाठशाला नहीं, पूरी स्टेट ऐसी है पूरी स्टेट। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा इसीलिए ही तो तुम्हें भेज रहा है, वहां बाबा के बच्चे बस बैठे हुए हैं तैयार, तुम्हें जाके संदेश देना है बाबा। लेकिन इतनी दूर, अभी तो हम आपसे हर साल मिलने आ जाते हैं इतनी दूर, नहीं नहीं बच्चे और भी जल्दी, बाबा तुम्हें समय पर बुला लेगा, ये बाबा ने कह के भेजा था, बाबा बुला लेगा। तब तो हम नहीं समझे, लेकिन कैसे 18 जनवरी के आसपास ही बाबा ने इनडायरेक्टली बस संदेश दे करके और बुला लिया, और इतनी दूर में दूर थे और वहां पर 17 जनवरी को यहां पहुंच गए। तो ये यहां पर आए क्लास, बाबा की अंतिम क्लास की बात मैं बता रहा था, बैठे हुए थे बस मुरली सुनते सुनते ही अचानक ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो अगर बाबा भाई कोई हमारे लिए पर्सनल कोई बात बोले, पर्सनल उन्नति के लिए। और ये जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं ना, तो भले अव्यक्त बाप दादा की टोली सबको मिलती है और मुरली सब सुनते हैं, लेकिन हर एक को दिल होती है मुझे भी स्टेज पर जाने का चांस मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा मेरे लिए दो शब्द बोल दे स्टेज, होती है ना अंदर सूक्ष्म में। तब तो नए नए थे उस समय कि बाबा सम्मुखी बाबा बैठे हुए हैं। जैसे ही अंदर संकल्प आए, देखो कर्मातीत अवस्था के क्या लक्षण होते हैं, अंदर संकल्प आया, बाबा को तुरंत पहुंचा और 2-3 सेकंड में ही बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के महावाक्य उच्चार दिया। लौकिक में भक्ति, भक्तों के मन में जो इच्छा होती है साक्षात्कार की हो या कोई भी इच्छा भक्ति में, तो इष्टदेव क्या करते हैं, जब भक्त बहुत भक्ति करता है, प्राण देने को भी वो हो जाता है भक्ति में, तो इष्टदेव का दर्शन होते हैं और वो भक्त अपनी इच्छा भगवान के सामने रखता है, भगवान के मुंह से क्या निकलता है, तथास्तु, बस और कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण। तो कमी हमारी है कि हम साधारण इच्छा रखते हैं, छोटी मोटी इच्छा, हमारे पति का बुद्धि का ताला खुल जाए, हमारा इसका ये बच्चे का ये समस्या दूर हो जाए, घर की ये, इतनी हाईएस्ट इच्छा रखोगी, ये छोटी मोटी इच्छा है सब उसके अंदर समाई जाएंगी। अब वो हाईएस्ट इच्छा ये, बाबा मैं आपके विजयी रतन हूं, माला का मणका हूं, क्योंकि बाबा ने ना माला का राज भी बताया है। आप ये नहीं सोचो कि माला के मणका तो हमारी दादियां और समर्पित बहनें और भाई लोग वो होंगे, हम तो सब गृहस्थी वाले हैं, नहीं। एक मुरली में बाबा ने बताया था, वो फिर शायद जब मुरली रिपीट होगी, माला का रहस्य क्या बताया था, है? नहीं लड़ियां तो लगा देंगे, माला की विशेषता, उसमें बाबा ने ये कहा था मेरी माला में एक विशेषता है, कौन सी, उसके अंदर मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं, पुराने से पुराने जो 1936-37 वाले भी हैं और नए से नए बच्चे भी हैं, भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं, कुमार हैं कुमारियां हैं भी हैं, समर्पित बच्चे हैं तो घर गृहस्थी प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे भी हैं, माला की ये विशेषता है। तभी तो भगवान को सर्वोच्च न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस वाला बोलेंगे, अगर भगवान ने सारे ही 1936 वाले ले लिए तो मेरा आपका क्या होगा सबका। बाबा तो कहता रेस खुली हुई है, लेकिन नहीं, भगवान का ये है उसमें, जैसे आजकल की दुनिया में भी गवर्नमेंट का कोटा रिजर्व होता है ना, कि भाई कोई पोस्ट होती है तो कुछ ओपन पोस्ट होती है, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, कोई बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है, हर एक के लिए उनकी पोस्ट उन्हीं के द्वारा भरी जाती है। ऐसे ही बाबा के जो 108 की माला का मणका है और जो वैसी वैसी कई मालाएं बाबा ने जो बताया है, उसमें जो मणके अधर कुमार प्रवृत्ति वाले के लिए रिजर्व है, उसमें निवृत्ति वाला कोई जितना भी हो वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसका रिजर्वेशन कोटा उसमें फिक्स है। कुमार है तो वो कुमार से ही भरा जाएगा, कुमारी है तो कुमारी से ही, अधर कुमार है अधर, तो उसमें कितना कम कंपटीशन रह गया। हम अपना कंपटीशन उनके साथ क्यों करें जो इतने पुराने दादी दादियां वो है, नहीं, बाबा ने हरेक के लिए कोटा रिजर्व किया हुआ है, तो इस कारण से हरेक के लिए खुला हुआ है। तभी बाबा ने कहा अंत में बड़ा आश्चर्य होगा बच्चों को माला का देख के, अरे ये तो इतना नए में नया, अभी इतने सिर्फ इतने साल पुराना और इसने गैलप करके माला का मणका बन गया, अरे ये इतने पुराने और वो उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया आदि आदि। तभी तो लास्ट सो फास्ट का गायन भगवान का मुक्का है वो सिद्ध तभी तो होगा। तो इसलिए कभी भी अपने अंदर हम कमजोर संकल्प न रखें, मन के अंदर ये संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है। अगर कमजोर संकल्प रहा ना, कोई बात आई, मानो यहाँ पर सुनी अभी जयंती बहन की क्लास सुनी, बहुत अच्छा नशा, बहुत बढ़िया क्लास, कि बहुत अच्छा क्लास तो बहुत अच्छा सब कुछ बहुत, लेकिन भाई जो परंतु लेकिन आ जाता है ना, भाई इतना हम तो गृहस्थी वाले हैं, एक बार क्लास कर लिया क्या होगा उससे, और हमारी तो समर्पित बहने भाई हैं, तो बस जैसे ये संकल्प आया और भगवान तक ये संकल्प पहुंचा और उसने तथास्तु बोल दिया तो क्या होगा, है? नुकसान किसका हुआ, हम अपना ही नुकसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो इसीलिए ये संकल्प सिद्धि का समय जो चल रहा है, इसमें कोई भी कमजोरी का संकल्प अपने अंदर ना आए। तो बाबा का ये देखा ना, तो जैसे ही हमारे मन में संकल्प हुआ बाबा ने को तुरंत पहुंचा और बाबा ने तुरंत कई महावाक्य एकदम उच्चार दिए उसके लिए नाम लेकर के। तो ये जो इच्छा मात्रम अविद्या, ये इष्ट देव जो होता है अपने भक्तों की इच्छा, ये सब पार्ट जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलता हमने देखा, हम सब लोगों के द्वारा भी चलता दुनिया देखेगी। एक एक ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी के समान ब्रह्माचारी, हम सभी ब्रह्माचारी होवनहार ब्रह्माचारी हैं, तो हम सबके द्वारा एक एक लिबास ये देखें कि कभी भी हमारे अंदर कमजोर संकल्प ना आए। भगवान हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, अगर कमजोर संकल्प करेंगे वो भी पूरा हो जाएगा, तो उसके नुकसान के लिए तो मैं खुद निमित्त बन गया ना अपने लिए। तो इसीलिए एक ये हम ना होने दें। और ये बाबा का देखा, और क्या बाबा का, उस दिन बाबा की ये मुरली जो चली, उसके बाद बाबा के ये मुरली एक बार भी जो खांसी नहीं आई, वो किस बात का सूचक है, जब ये हाँ हमारे योग बल की इतनी हाईएस्ट स्टेज हो जाएगी जो बाबा बताता है कि ज्वालामुखी अग्नि जैसा योग, वो कि उसके अंदर जो हमारे पुराने कर्म भोग होंगे वो सब भस्म हो जाएंगे और अंत में जो हमारा योग बल है वो भोग बल के ऊपर पूरा विजय प्राप्त कर लेगा, शरीर की व्याधि और जो भी शरीर के हिसाब किताब है। और बस उसके बाद बाबा एक बार भी वो नहीं हुई खांसी, देखा बाबा उठे, उठ करके चले, फिर बाबा एकदम खड़े हो गए, फिर दृष्टि देने लगे, एक एक बच्चे को दृष्टि दी। बस बाबा को ये हो आज मैं, क्योंकि देखो जब कर्मातीत अवस्था को आत्मा पहुंच जाती है तो उसका एक वरदान स्वतः ही एक बात सिद्ध हो जाती है, क्या जो महाभारत में भी भीष्म पितामह का क्या गायन है, इच्छा मृत्यु का। तो ये बाबा की कर्मातीत अवस्था पहुंच गई थी तो बाबा को आभास हो गया था कि बस ये मेरा अंतिम मिलन है बच्चों के साथ, शिव बाबा के का साकार मेरे द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ये अंतिम मिलन। तो बाबा की बिल्कुल वही स्थिति जैसे एकदम न्यारी प्यारी, और बाबा खड़े हुए देने, फिर एक कदम चले, फिर मुड़े, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, बिल्कुल वो, फिर एक कदम चले फिर रुक गए कि ब्रह्मा कैसे, कि जैसे हमेशा की तरह भाई चलो क्लास पूरी हुई, लेकिन उस दिन बाबा को यह हो बार बार, आज मैं अंतिम बार बच्चों से मिलन मना लूं। इच्छा, तभी तो हम सबको भी ये वरदान होना बहुत जरूरी है इच्छा मृत्यु का। क्यों? क्योंकि अब बस पहले बाबा का बता दें, बाबा गए बाहर, और बस बाहर जाके बाबा ने जो ये महावाक्य उच्चारे कौन से, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये शब्द अभी तक भी टेप में भरे हुए, किसी भी मुरली में 1936 से लेकर इतनी सारी मुरलियां टेप्ड हैं, किसी में बाबा ने ये नहीं कहा 18 जनवरी की रात्रि को बाबा ने कहा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये इस बात का प्रतीक है इच्छा मृत्यु का, कि बाबा को जैसे बस अब मेरे सब हिसाब किताब चुकते हो गए, अब मैं जा रहा हूं। और इच्छा मृत्यु का ये होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि तभी तो हमारी सबकी अंत मते सोगति होगी। अभी मानो यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है, सडनली अर्थक्वेक आ जाए, भूचाल आ जाए, ऊपर से ये गर्डर बीम वगैरह पड़े हैं, ये सब गिर जाए, बस चारों तरफ चीतकार मच जाए, बाबा ने कहा हलचल होनी है, जल लग्नि वायु पांचों तत्वों की, अभी तो एक तत्व की हलचल होती है तो इतना हो जाता है, और जब पांचों तत्वों की हलचल इकट्ठी होगी उस समय क्या होगा, अति हलचल में हमारी स्थिति अति अचल हो, तो ये अपने को कब उस तभी फायदा मिलेगा अंतमति सोगति का। तो ये तब होगी अंतमति सोगति, जो बाबा ने कहा जब अंत समय में हमारा बुद्धि योग है, वायरलेस का जैसे कनेक्शन होता है, वायर नहीं होते हैं, ऐसे वॉइसलेस कनेक्शन हो, उससे फायदा क्या होगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा है आपके कदम ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां विनाशकारी बातें होंगी जहां, वहां आपके कदम बढ़ेंगे ही नहीं। और ये कई बार हमने कई घटनाओं को वो हमारी स्मृति में है जो यहाँ पर पत्र आते हैं सुनते हैं, लाटूर का हो, चाहे भोपाल गैस ट्रेजेडी का हो, चाहे कचभुज का अर्थक्वेक का हो, कितनी घटनाएं, कितने बच्चों का पत्र आते हैं यहाँ पर, समाचार आते हैं, दादी ऐसा हुआ हमारे घर में दो चीने हैं, एक जीना ही हम यूज करते हैं, दूसरा तो कभी यूज नहीं करते, जब हलचल हुई एकदम ऑटोमेटिकली बस उधर की तरफ भागे, क्योंकि समय नहीं था, और बस जहां कभी भी यूज नहीं करते उधर से हम उतर गए, दूसरी तरफ का जीना बिल्डिंग वो सारी गिर गई और ये विनाश हुआ। ये तो एक पचासों बातें भोपाल गैस ट्रेजेडी की भी, वही ऑटोमेटिकली बाबा की टचिंग, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो इसलिए इसके लिए क्या करना है, ये जो बाबा का ना देखा कि बाबा सबसे विदा लेकर के अपने कमरे में गए, कमरे में जाके दादी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने देह त्याग किया, शरीर से छुट्टी ली। लेकिन उसके बाद आश्चर्य क्या देखा, सबसे बड़ा जो बताया ना, अंत मते सोगते और जगत जीत का वो दृश्य देखा, क्योंकि हम तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में थे। 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, और अर्ली नाइट में है, 18 की रात भर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। यहाँ पर हम लोग कुछ थे, बाकी सब वरिष्ठ भाई बहन पहुंच ही गए थे। तो जब अंतिम दिन हम लोग संस्कार, बाबा को स्नान वगैरह कराया, तो एक बड़ी आश्चर्य की सी बात लगी, जब आत्मा जैसे शरीर छोड़ करके जाती है तो क्या होता है, शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है कुछ घंटों के बाद ही। यहाँ भी डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, आप में से भी हो सकता है कोई डॉक्टर हो, मैंने भी कईयों से पूछा, लेकिन इतने 65 घंटे के बाद भी बाबा के शरीर में बहुत काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोई वो नहीं। और दूसरी बात, बाबा को कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं, क्योंकि हम तो यहीं पर ही थे, बाबा को कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई गई थी जिससे, नहीं तो आजकल तो शरीर महीनों महीनों तक भी रख देते हैं, यहाँ तो कुछ था ही नहीं उस वक्त, कोई लोकल डॉक्टर वगैरह भी नहीं, और हमारा भी कोई इतना सेटअप नहीं था। तो बाबा का पूरा शरीर ऐसे ही चमकता हुआ, नहीं तो शरीर भी काला पड़ जाता है, शरीर में दुर्गंध आ जाती है, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही लगता था बाबा जैसे सो रहा है, और हमेशा की तरह उठ करके बाबा कहेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, वही चमकता हुआ शरीर, और कोई दुर्गंध नहीं, कोई कालापन नहीं, स्टिफनेस भी थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन कोई स्टिफ ऐसे नहीं, बिल्कुल बाबा के शरीर में काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये इस बात का प्रतीक है, किसका? प्रकृति जीत का प्रतीक। मन जीते जगत जीत में प्रकृति जीत भी, क्योंकि ये शरीर तो प्रकृति का बना है ना, पांच तत्वों का, तो ये प्रकृति जीत ये अंत तक तब साथ देगा जब मन जीत के साथ साथ हमने प्रतिदिन भी प्रकृति को भी योगदान दिया होगा, प्रकृति को अपना निकट का मित्र बनाया होगा। देखो, मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है आवश्यकता के समय। ऐसी प्रकृति के तत्वों को भी ना, प्रकृति हमारी मृत्यु का कारण न बने, बस ये देखना है। ये तत्व, भूचाल आएगा, सुनामी आई, बाढ़ आई, बंबई भी नगरी बाबा ने कहा वो डूबेगी, लेकिन कैसे ये सब पांच तत्व ये हमारे उत्थान का कारण बने, न कि कष्ट और मृत्यु का। क्योंकि अगर ये हमारे कष्ट मृत्यु का उसका कारण बन गए तो अंत में सोगते हो जाएगा, क्योंकि ये तो अंत में बहुत इनकी भयंकर लीला होनी है, बहुत ज्यादा इनको हिसाब किताब चुकतू करने सब आत्माओं से। तो उसके लिए हमें क्या करते चलना है, एक एक बात बस बताएंगे, हैं तो बहुत बात, कि ये तत्व जो है ना, जिनसे हमारा ये शरीर बना है, इनको हम अपना मित्र बना ले तत्वों को। कैसे मित्र बनाएंगे? मानो पृथ्वी है, हम चाहते हैं जितनी भी भूतचाल आए लेकिन मुझे कष्ट न हो, मेरे मृत्यु का कारण वो न बने। तो प्रकृति में, धरती में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? कौन सा गुण है? सहनशीलता। उससे भी बड़ा गुण है प्रकृति में दातापन का। प्रकृति हमेशा देती है, धरती में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। अनाज देती है, जल देती है, फल देती है, तेल देती है, मिनरल्स देती है, क्या नहीं देती है? सब चीज धरती देती है। ऐसे ही मैं भी धरती को अगर मित्र बना लूं, यानी अपने में दातापन का गुण धारण कर लूं, बस जो भी आए हर एक को मैं कुछ ना कुछ दूं। कोई स्थूल देने की बात नहीं है, कपड़ा, अनाज, धन दौलत नहीं, हर एक आए जो हमसे शांति, रिस्पेक्ट, पवित्रता, वाइब्रेशंस, ये सब। कोई भी आत्मा खाली हाथ में जाए, हर एक से हमारा दातापन का पार्ट हो, तो क्या होगा? धरती को ना जैसे हमने मित्र बना लिया। बाबा कहता है जिसको जो आवश्यकता है, अभी दुखी आत्मा आए है, बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए। कैसे ये उसमें परिवर्तन हम कैसे करेंगे? जैसे ये तो धरती का अग्नि का गुण होता है ना, सबसे बड़ा अग्नि हर एक चीज का स्वरूप बदल देती है, कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसी हमारी भी ज्वालामुखी स्वरूप ऐसा बना हुआ हो, योग अग्नि तेज हो, जो अशांत आत्माएं शांति के सागर में लहराती चली जाए, दुखी आत्माएं सुख के अनुभव करते हुए बस वाह भगवान वाह वो गुण गाती हुई चली जाए। कैसे उसका रूप बदलेगा? हमारे द्वारा जब बाबा, शिव बाबा भक्तों की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, अंत में आएंगे बहुत इच्छा लेके, कोई मानो राम के दर्शन की इच्छा लेके आया, कोई कृष्ण का, कोई दुर्गा का, कोई काली का, जिसका जो इष्ट देव है। अब हम तो एक ही है, हमारे द्वारा कैसे सबको अनुभव होगा अलग अलग इच्छा पूर्ति का? साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार की चाबी तो ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं थी, शिव बाबा के पास है। तो हम जितना अपना तन और ये मन, ये जितना पवित्र रखेंगे, बाबा इस तन मन के द्वारा सबको साक्षात्कार उनकी इच्छा के अनुरूप कराएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के सुना है सबने, ब्रह्मा बाबा के शुरू से जब तक बाबा रहे देखते लोगों को कृष्ण का, नारायण का, सुरक का सारे साक्षात्कार होते थे, बाबा से सब लिपट जाते थे जाके, क्योंकि बाबा कृष्ण की आत्मा थी, नारायण की आत्मा थी। लेकिन वो भी सबने बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा होगा ना कि एक सरदार जी है, उनका परिवार ज्ञान में आता था, वो नहीं आते थे तो वो थोड़ा एंटी थे, और जब परिवार ज्ञान में जाता था, हमारा तो धारणा का ज्ञान है, तो उन्हें बहुत खराब लगता था। उन्होंने ये सोचा कि मैं बाबा को मार दूंगा, यज्ञ की बात है शुरू की, तो वो छुरी लेके गए छुपा करके, और बस बहन से कहा बाबा से मिलना है, तो बहन ने कहा चलो बाबा के पास ले गए। बाबा बैठे हुए थे सरदार जी को वहां बैठा के, बहन तो अपने काम में लग गई, और जब अकेले रह गए वो, तो उसने छुरा निकाला और बाबा की तरफ जैसे ही बढ़ा तो क्या साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक देव का। अब बाबा गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन साक्षात्कार करण करावन हर शिव बाबा है, तो वो उसका ही साक्षात्कार कराता है जिसका कि जो उसका इष्ट देव होगा। सरदार जी का इष्ट देव गुरु नानक देव था। अगर मानो ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता, उसकी तो कोई भावना श्रद्धा नहीं थी, वो तो अपना काम करके चला जाता। तो बाबा ने वही साक्षात, ऐसे ही हमारे द्वारा अनेक जितने भक्त होंगे हरेक को अपनी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार होगा, और ये तभी होगा जब हमारे अपने मन के अंदर कोई लहरें नहीं होंगी किसी भी प्रकार की, किसी भी आत्मा के लिए कोई भाव, अच्छा भाव या खराब भाव कोई नहीं, सबके लिए सम भाव होगा, क्योंकि लगाव झुकाव वो भी बुद्धि को खींचता है, और घृणा ईर्ष्या अपमान ये भी बुद्धि को खींचता है। तो इसीलिए ऐसा भाव सब आत्माओं के लिए, न अति स्नेह का भाव न अति घृणा का भाव, कुछ भी। तो ये बाबा को उसने देखा, बहुत एकदम आश्चर्य रह गया, अरे गुरुजी मैं क्या करने जा रहा था, ओह मुझे माफ कर दो, पश्चाताप, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा के पैर के पास छुरा रख दिया उसने, माफ कर दो गुरुजी, माफ कर दो। बस बाबा के रूप में उसे गुरु नानक देव ही दिखते रहे, और बस वो रो करके क्षमा याचना करके वहीं छुरा रख के वो चला गया। तो भाव क्या है कहने का, कि करण करावन हार वो है, लेकिन माध्यम हम है। तो इसीलिए तन मन अगर हमारा जितना पवित्र रहेगा, जितना शुद्ध रहेगा, तब ही बाबा हमें सेलेक्ट करेगा भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस कारण से ये तो अग्नि का बताया, इस तरह मुख्य धरती का जैसे बता रहे थे ना, कि धरती का संस्कार कौन सा है, दातापन का। कोई भी आए बस उसकी, बाबा ने कहा है कोई भी खाली हाथ ना जाए, इच्छा पूर्ति का अनुभव। तो क्या होगा अगर हम दाता बन के प्रेम शांति जो आत्मा के गुण हैं हरेक उसका अनुभूति करते हुए जाए, तो क्या होगा, इसका मतलब हमने धरती से मित्रता कर ली, तो धरती में जितनी भी हलचल होगी लेकिन धरती हमारी मृत्यु का, हमारे दुख का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि वो हमारी मित्र है, मित्र तो मित्र की रक्षा करेगा। ऐसी धरती में बहुत गुण है, हर एक तत्व में 10-10 गुण है, मैं तो एक बता रहा हूं यहाँ पर केवल धरती का। जल का कौन सा गुण है, हैं? शीतलता, शीतलता से भी बड़ा एक गुण है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। धरती को ना, ये जल को जिसमें लो उसमें सेट हो जाता है, गिलास में लो गिलास में, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में, चम्मच में लो चम्मच में, हर जगह सेट हो जाता है जल, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। ऐसी हमारा संस्कार भी ऐसा हो, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ऐसा नहीं बाकी तो सब ठीक है, मेरी सास का, बहू का या बाप का बेटे संस्कार वह उनसे नहीं मिलते, बाकी सबसे मिलते हैं, नहीं, हर आत्मा से हम सेट होके एडजस्ट होके चल सके। तो जल का गुण हमने अपने में धारण कर लिया, उससे क्या होगा, जितनी भी सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, तूफान, पानी आएगा बहुत, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जल में ये गुण होता है, जल आगे बढ़ता रहता है और पत्थर भी बड़ी रॉक आई तो वो रुकेगा नहीं, अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। ऐसे हम भी सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा कहता है, अभी थोड़े दिन पहले ही था ना, कोई पत्थर आता है समस्या, उसको तोड़ने में नहीं लग जाओ, है बस अपना रास्ता लेके निकल जाओ, बस यही आवश्यकता है। तो जल का गुण धारण करने की, जल का ये गुण धारण कर लिया, और बहुत गुण है, शीतलता है, एडजस्टमेंट के साथ साथ आगे बढ़ने का है, फ्रेश करने का आदि आदि, लेकिन मेन गुण बता दिया ये जो जल का, एडजस्टमेंट का। सबसे एडजस्ट होके अगर हम चल सकते हैं, हर एक आदमा अच्छे से तो हर एक कोई एडजस्ट हो जाता है, बुरे से बुरे के साथ हम एडजस्ट होके चल सकें, ब्यूटी ये है लाइफ की। तो इसीलिए ये होगा संस्कार, तो जल, जितनी सुनामी होगी, फ्लड होगा, तूफान, वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। ऐसे ही आकाश का क्या गुण है सबसे बड़ा? आकाश विशाल तो है, इस कारण से, विशालता के कारण आकाश के द्वारा हमारा सबसे कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है। किस लिए? क्योंकि आकाश में सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, यहां से रेस भेजते हैं, वहां से लौट करके। अगर वो सैटेलाइट ना हो आकाश के अंदर, 36,000 किलोमीटर के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, मतलब वहां पर ये छोड़े हुए हैं, उससे हमारा सबसे वार्तालाप होता है। ऐसी आकाश की तरह हमारे हृदय में विशालता हो। कोई बहुत अच्छा है, होता क्या है, कोई बहुत अच्छा है जिनसे हमारे संस्कार मिलते हैं, उनसे तो हम बहुत देर तक बात करते रहेंगे। क्लास भी जब पूरी होती है ना, क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए दो दो चार चार का ग्रुप आपस में मिलके बात बात करते हैं, जिनसे अच्छा पटती है, बाकी सबसे नहीं। क्यों? किन्हीं से हमारा अति स्नेह है, किन्हीं से हमारा स्नेह नहीं है। अति मतलब कोई संबंधों में दूर है। इस कारण से क्या होगा, अंत समय में ये अगर हमने नहीं किया होगा ये संस्कार, हर एक के साथ हमारा विशालता का, हृदय इतना विशाल हो हर एक की कमी कमजोरी को हम समा सके, भुला सके, उसे क्षमा कर सके। हमसे महान कोई नहीं है, और महान आत्माओं में एक गुण सबसे बड़ा होता है क्षमा का। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा, आप जिस धर्म के लोग ले लोगे धर्म, हर एक में सबसे बड़ा सा क्षमा का गुण था। और क्षमा माने हृदय की विशालता। अभी तो क्या होता है, किसी से कोई अगर बात है, टकराव, सामने से भी कोई आ गया लेकिन संबंध अच्छे नहीं है तो घुमा के दृष्टि निकल जाएंगे, सामने भी आएगा दृष्टि उसे नहीं देंगे, दृष्टि से मिलन भी नहीं होगा और अलग। और जिनसे संबंधों में मधुरता है उनके साथ हमारा वार्तालाप काफी चलता है। बस ये गुण जो है अवगुण के रूप में हमें अंत समय बहुत कष्टदायक होगा। क्यों? क्योंकि बाबा हर एक चीज में हमें बेहद में ले जा रहा है, आकाश भी बेहद है। इस कारण से इतनी विशालता हो, क्षमा, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं, ऐसा कहते हैं। वीर ही क्षमा कर सकते हैं, जो कायर होगा उसके मन में ना किसी आत्मा के प्रति कोई अवगुण, अच्छा इसने मेरे साथ ये किया, मुझे भी जब मौका मिलेगा मैं भी ऐसा करूंगा, ये बदले की भावना, बस ये कायरता है, ये महानता नहीं है, वीरता नहीं है, कायरता है। इसीलिए बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जीवन के अंदर ये ऐसा हो, बहुत ऐसे होते हैं संबंधों में, बस सबसे पहला काम यही करे, आज ही मोबाइल के द्वारा कहीं भी किसी से संबंधों में कटुता हो, वार्तालाप ना हो, तो ये उसे करें, चलो भाई आज एकदम ख्याल आ गया आपका, कैसे हैं, कहीं ना कहीं आइस ब्रेकिंग जैसे बोलते हैं वो। तो एक ये है आकाश की तरह विशालता। तो उससे फायदा क्या होगा? आकाश मार्ग से आने वाले विनाश के बहुत साधन है। आकाश से ही एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, रॉकेट, जितने बम हैं सब आकाश मार्ग से ही तो आते हैं मिसाइल। तो वो आकाश मार्ग से आने वाली जो भी चीजें हैं वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना बना लिया, आकाश की विशालता हमने धारण कर ली, आकाश में जो महानता का गुण है वो हमने अपना लिया। तो आकाश हमारी अंत समय तक ये सहायता करेगा। और न क्लाउड बर्स्टिंग, आजकल पानी का भी उत्तराखंड में भी ये हुआ था अक्सर करके, आजकल क्या होता है कई बार क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं जो बादल होते हैं ना, और उससे क्या होता है दो चार घंटों में ही इतना पानी बरस जाता है जो कि एक महीने में बरसना चाहिए एकदम। उससे नदियों में बाढ़ आ जाती है, उससे एकदम देखते ही देखते, अभी कुछ नहीं है, देखते ही देखते जल स्तर कुछ मिनटों में ही पहली मंजिल दूसरी मंजिल श्रीनगर में, और क्या हुआ हर जगह उत्तराखंड में भी, वहां पर यही पिछले साल हुआ था बहुत ज्यादा ये। वो क्यों? क्लाउड बादल ऊपर है और आकाश में है, इसीलिए अगर वो हमने ये गुण धारण किया होगा तो ये क्लाउड है चाहे बादल पानी का है आकाश, वो पूरी हमारी मदद। इसीलिए ये तत्व जड़ नहीं है, इन तत्वों को हम देवता मानते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, ये चैतन्य में हम इनसे रोज वार्तालाप करें, इनको अपना जैसे आपस में करते हैं रोज इन तत्वों से वार्तालाप करें। इसके साइंटिफिक एविडेंस कई हैं, यहाँ तो मैं समय के अभाव में नहीं बताऊंगा, लेकिन अमेरिका और उन सब जगह के ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो इनसे वार्तालाप करता रहा, तत्वों ने उनकी किस तरह रक्षा की। तो इस तरह ये आकाश का है। वायु का गुण कौन सा है? वायु का हल्कापन। धरती हर चीज को खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है। तो ऐसे ही हमें जीवन में ये अभ्यास हो हर परिस्थिति में हल्का रहने का, कोई परिस्थिति हमें भारी ना कर दे। जब परिस्थिति से भारी हो जाते हैं तो क्या है, बस एकांत अच्छा लगता है। एकांत माने वैसे एकांत अच्छा है, लेकिन ये मन का ये वो एकांत नहीं होता, मन बहुत चलता रहता है, शारीरिक रूप से हम एकांत में चले जाते हैं तो उसमें न खाना अच्छा लगेगा, न बोलना अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं, अति भारी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें हर परिस्थिति में हल्का रहने का अभ्यास होगा, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, तो क्या होगा कि अंत समय में ये भी एक विनाश का बहुत बड़ा साधन है, साइक्लोन्स, जो अति तेज हवा चलने है। साइक्लोन जब लैला है, कैटरीना है, और अलग अलग, देखो अमेरिका महाशक्ति, सब पर उसने विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रकृति के सामने घुटने टेक देता है, उस पर बस नहीं चलता। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि प्रकृति वहीं पर, इसीलिए प्रकृति का प्रकोप सबसे ज्यादा उधर हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को भी उसने दोहन काफी किया है, और उसको देख के विश्व ने प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया है, इस कारण से ही प्रकृति जैसे अभी बदला ले रही है। तो वायु की तरह हम सदा हल्के रहें, बस गीत भी है ना, क्या उड़ते रहो और उड़ाते रहो, भारी न हो ये अपने अंदर वो। और कौन सा गुण रह गया? अग्नि का प्रतीक क्या है प्रकृति में? सूर्य, सूर्य है ना अग्नि का प्रतीक। तो ये थोड़ा तो ये बताया कि अग्नि में हर चीज का स्वरूप बदल जाता है, और अंत समय में जब आत्माओं को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तो आत्माएं हमारे पास आएंगी, और विज्ञान इसमें मदद करेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट विज्ञान यही मदद करेगा, चारों तरफ ना लोग जाएंगे, हाँ ये भी नहीं, यहाँ भी शांति नहीं, यहाँ भी ऐसा है, और जब यहाँ आएंगे, यहाँ का वातावरण हमने इतना स्पिरिचुअली चार्ज किया हुआ होगा, एक एक सेंटर का वातावरण बाबा के इस बड़े घर का, मधुबन का, आदि आदि, हाँ, और उससे क्या होगा, अग्नि का स्वरूप, उन सब का मुख ज्ञान सूर्य परमात्मा की तरफ हो जाएगा। सूर्य कल परसों भी था ना मुरली में, परछाई का है ना, हाँ वैसे परछाई क्या, सूर्य आगे होता है तो परछाई पीछे होती है, और सूर्य की तरफ अगर पीठ हो जाती है परछाई आगे आगे चलती है। तो परछाई क्या है? छाया यानी कि माया, यानी कि कमजोरी, मन की कमजोरियां। तो प्रकृति जीत बनने के लिए माया हमें गाइड ना करे, परछाई हमारे आगे आगे न चले, उसका साधन क्या है? सूर्य हाँ पीछे ना रहे। ज्ञान सूर्य बाबा सामने रहेगा तो परछाई पीछे रहेगी। ये कमी कमजोरियां पेपर ये सब आएंगे, लेकिन हम उन्हें गाइड करेंगे, वो हमें गाइड नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही अगर हमारी पीठ हुई और सूर्य, तो ये परछाई हमें गाइड करेगी। कमी कमजोरियां, इतने जन्मों के संस्कार जो हैं, ये भड़क भड़क करके निकलेंगे। बाबा ने कहा अगर थोड़ी भी वो रहा, अगर चिंगारी का भी, वो एकदम ज्वाला का रूप धारण कर लेगी। संस्कार ऐसे बिल्कुल भस्म किए हुए हों, अगर थोड़े भी ना रह गया तो वो बहुत बहुत परेशान कर दे, अंत में बहुत बड़े रूप में सामने आएगा। इसीलिए इन संस्कारों के ऊपर भी विजय प्राप्त। तो ये तत्वों का थोड़ा बताया, और बहुत पेपर है, लेकिन मुख्य बात बस यही है, एक मन जीते कि संकल्पों में कभी भी कमी कमजोरी ना आने दें। बाबा का एक एक जो बात है उसको सुनने के लिए तक ही सीमित न रख के उसे अपने तक धारण करके उस समान बनने का। और बाबा देखो कितना दयालु है, यहाँ भी देखा होगा ना, बाबा कई बार आता है, पेपर देता है। लास्ट ईयर बाबा ये होमवर्क देके गया था, करा किसी ने, तो जिन्होंने किया हुआ होता है हाथ थोड़े उठ जाते हैं, फिर बाबा थोड़ा और डाइल्यूट कर देता है। अच्छा चलो नहीं कर सके पूरा, जिसने 50% 20% भी किया है वो हाथ खड़ा करो, थोड़े और ज्यादा हाथ हो जाते हैं। फिर बाबा कहता है चलो अच्छा कोई इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जो संकल्प करते हैं कि अब हम करेंगे बाबा, तो हाथ खड़ा करो, सभी हाथ खड़ा कर दे। कितना दयालु है, ग्रेस मार्ग देते हुए भी बाबा हर एक बच्चे को पास करा देता है। तो अभी बाबा के आने के दिन है, अभी से लगभग एक महीना है, एक महीना से भी कम। तो पिछले साल की सब मुरली का 9-10 मुरली होती है सिर्फ, अध्ययन करके उसमें होमवर्क निकालो। बाबा ने लगभग 8-10 होमवर्क दिए हुए हैं, वो निकाल करके उस पर थोड़ा भी अभ्यास करते हैं ना, बस हम श्रीमत मानने वालों की श्रेणी में आ गए। और बाबा जब हाथ खड़ा कराएगा, भले हम सक्सेस, बाबा ने कहा मानो 8 घंटे याद की यात्रा, 8 घंटे का हमने पुरुषार्थ किया, चार्ट किया, लिखा, भले 2 घंटे तक भी पहुंचे हों, लेकिन पुरुषार्थ कर लिया, इसका मतलब श्रीमत का हमने उल्लंघन करने वालों की लाइन में नहीं आए, पालन करने वाले। तो उस वक्त हम गर्व से, जब बाबा हाथ खड़ा करवाएगा तो गर्व से हम हाथ खड़ा कर सकेंगे, हाँ बाबा हमने करा तो है, लेकिन हम पहुंचे सिर्फ 2 घंटे तक ही। बाबा कहेगा कोई बात नहीं है, हिम्मत मर्दा मदद होता, 2 घंटे का पुरुषार्थ तो किया, बाकी मैं बंधा हुआ हूँ, मैं तुम्हें 8 घंटे तक ले जाऊंगा। लेकिन पहला ही कदम हमने नहीं बढ़ाया होगा, अभी याद नहीं होगा मुरलियों का, तो इसीलिए एक ये काम जरूर करें, वो अव्यक्त मुरली में जो जो होमवर्क, और अलग से भी राजू भाई ने भेजे हुए थे को होमवर्क क्या है, उन पर याद करें। तो बस मन जीते जगत जीत होके हम सब बाबा के साथ विजयी होके अपने घर चलेंगे, नई दुनिया में आएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंगल भाई जी, आपने विषय के साथ साथ साकार बाबा के अनुभवों का भी हमें लाभ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।